सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च. ओके, कृष्णा आप पढ़िएगा. एक चीज इंटरेस्टिंग है, आशय शब्द समझते हैं आप? आशय का मतलब होता है हृदय, अंतःकरण. कर्माशय क्या हो गया? हाँ, माइक पे बोले, माइक तो पास में, आपके घबरा क्यों? ये शब्द अच्छा है, बोलिए.
कर्म ग्रंथ, हृदय का कर्म ग्रंथ.
हाँ, वो तो समझ रहे हैं. कर्माशय मतलब जिस हृदय में कर्म करने की बहुत इच्छा है. अच्छा, दुराशय मतलब? दूर मतलब बुरा, आशय मतलब हृदय. तो आपको श्लोक याद आ रहा है, नाते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशय ये बहिरर्थ मानिना. याद आ रहा श्लोक? दुराशय का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति का हृदय गंदा है वो बहिरअर्थ मानेगा. मतलब अर्थ मतलब जहां से मुझे सुख मिल रहा है, और बहिरअर्थ मतलब कृष्ण को छोड़ करके मुझे कहीं सुख मिल जाएगा. तो ये अंतःकरण का गंदगी है. खैर, यहां भगवान बता रहे हैं सर्वभूताशय स्थितः. क्या अर्थ है इसका? सर्व मतलब सभी, आशय मतलब हृदय, स्थितः मतलब रहना. तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम आत्मा गुड़ाकिश. गुड़ाकिश किसका नाम है? अर्जुन का है. आचार्य बोलते हैं गुड़ाकिश का अर्थ ये होता है कि जिसने नींद को जीत लिया है. तो बोलते हैं कि क्योंकि अर्जुन ने नींद को जीत लिया है इसलिए वो ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान करने बैठे और सो गए तो फिर कैसे ध्यान करेगा. बड़ा अच्छा बोलते कि गुड़ाकिश मतलब अर्जुन के पास शक्ति है कि वो नींद को जीत सकते हैं. नहीं तो आपने देखा है ना, जब करते समय बहुत लोगों का ध्यान लग जाता है, तो उस प्रकार के ध्यान ही नहीं है. तो अब आप देखिए, बहुत बार लोग बोलते हैं हम उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं. तो आप परमात्मा का वर्णन कर सकते हैं कि नहीं श्लोक से? अब ये श्लोक तो हर भक्त को याद कर लेना चाहिए. अहम आत्मा, अहम का मतलब क्या होता है? मैं मतलब अव्यक्त ब्रह्म परमात्मा. नहीं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो मतलब मैं मतलब कृष्ण. आत्मा मतलब मैं सबके परमात्मा के रूप में रह रहा हूं. गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः. तो यानी समझ में आ गया परमात्मा कौन है? कृष्ण है. देखो स्पष्ट है कि नहीं? अब अगर कोई व्यक्ति बोले कि परमात्मा का ध्यान करो तो किसका ध्यान करना है? कृष्ण. तब कभी किसी को प्रचार करेंगे वो प्राय उनसे पूछिए भगवान कौन है, बोलेगा परम पिता परमात्मा परमेश्वर. तब कहेंगे देखिए गीता में क्या लिखा है, आपको याद कर लेना चाहिए. 10.20 आसान है, 10-20 ठीक है, 10-20 में आपको मिल जाएगा श्लोक. अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः. ठीक है, पढ़िए अनुवाद.
हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ. मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ. तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला. जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं.
जैसे आप देख सकते हैं कि कृष्ण बलराम साक्षात हैं मंदिर में, लेकिन जो लोग पाप से मुक्त नहीं हैं वो नहीं समझ पाते. कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कभी कभी लोग भगवान को देखने के अलावा सब कुछ करते हैं मंदिर में. आपने देखा है कभी? बाहर के लोग आते हैं वो कृष्ण बलराम को नहीं देखेंगे, अपना सेल्फी देखेंगे, सब कुछ करेंगे. तो यानी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं भगवान की प्रेजेंस में साक्षात हूं. इस चीज को मैं पढ़ रहा था अभी भक्ति संदर्भ में, कि जो लोग पापी हैं वो भगवान का अनुभव इस जगत में नहीं कर पाते, इसलिए भगवान कृपा करके अपने विग्रह के रूप में आते. ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है. और इसका रेफरेंस मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन भाई महाराज जी थे, क्या नाम है उनका, रितध्वज महाराज, वो बता रहे थे कि भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वैकुंठ में वो सब सम्मिलित होकर के विग्रह के रूप में आते हैं. इतनी कृपा भगवान करने के लिए आते. हाँ, अब ये बात है कि हम जितना चैतन्य होंगे, चैतन्य समझते हैं जितना कॉन्शियस होंगे कि मैं भगवान के सामने हूं, उतनी मात्रा में भगवान से हम आदान प्रदान कर पाएंगे. तो ये हम सब लोगों के लिए भी आवश्यक है, जब भी मंदिर में जाएं तो काफ़ी सारे नियम आप जानते हो, भगवान के सामने उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे लोग फालतू की बात नहीं करना चाहिए। और हम जैसे कल मंगल आरती के लिए भी जाएंगे तो ये चैतन्यता से युक्त रहना चाहिए कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। आपको बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी लेकिन सिंपल सी बात नहीं है, ठीक है, हम केवल मूर्ति देखने नहीं जा रहे। ओके,
अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण,
इस चीज को समझिए, जिसने कोई साधना नहीं करी है उसको आप गीता का ज्ञान क्या देंगे? आप देने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, वही स्थिति होगी जैसे ये बोतल भरी हुई है उसके ऊपर आप पानी डालते रहिए। या जिसके प्रति, जिसके हृदय में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है उसको आप भगवत गीता का ज्ञान क्या देंगे? जिसको 1+1=2 नहीं आता उसे कैलकुलस क्या पढ़ाएंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप जब करते हो समझ रहे ना, नहीं तो शुरुआत में आप देखो लोग बोलते हैं हाँ हाँ समझ में आ रहा है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ये बड़ा दिक्कत है। मैं अभी कुछ दिन पहले क्लास दे रहा था एक, तो वो काफी वो प्रिंसिपल थे व्यक्ति, और बस खाली हम यही चर्चा कर रहे थे कि मानव जीवन और पशु जीवन में क्या अंतर है। अब मैंने उनसे पूछा आप भी कुछ बोली, कहते हैं नहीं नहीं तुसी बोलो, मेरा मतलब पंजाबी थे, कहते आप बोलो हमें नहीं बोलवाइए। ऐसा क्या मुश्किल बात कर रहे हो? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति भगवान को ऐश्वर्य को समझना चाहता है उसकी कुछ योग्यता है, उसका हृदय दुराशय नहीं होना चाहिए, कर्माशय भी नहीं होना चाहिए। यस,
सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है, अतः वे प्रधान महत्तत्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं। वे
थोड़ा समझ लीजिए इसको, यहाँ पे अहम आत्मा शब्द को समझा रहे हैं। एग्जैक्टली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ऐसे समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी उसको वही कोट कर रहे हैं कि महाविष्णु किसकी आत्मा है, परमात्मा है, महतत्व की, संपूर्ण महतत्व की नहीं, के परमात्मा जो है वो कौन है? महाविष्णु। और महतत्व की सृजन कौन करता है? भगवान विष्णु करते हैं। और उसमें शोभ कौन उत्पन्न करता है? महाविष्णु करते हैं। कैसे करते हैं? दृष्टिपात के द्वारा। तो यानी उसमें प्रवेश करते हैं कौन? महाविष्णु। समझ में आता है? अब दूसरे वाले कौन, नेक्स्ट लेवल के आत्मा कौन है? गर्भोदय कषाय विष्णु, जो कि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो वो एक अहम आत्मा है। यस, परमात्मा है। यस, पढ़िए।
वे आत्मा है, जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे
प्रकटीभूत का अर्थ समझते हैं मैनिफेस्ट, जो आपको दिखता है। यस, कुछ कुछ शब्द समझाना जरूरी है नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी,
तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है।
बिना बारे में समझा देता हूँ, नेक्स्ट परमात्मा कौन है? गर्भोदय विष्णु प्रवेश कर रहे हैं सबके हृदय में, किस रूप में? शिरोदकषाय विष्णु के रूप में। गर्भोदकषाय विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं, कैसे? शिरोदकषाय विष्णु के रूप में, और वो अहम आत्मा के रूप में सारे जीवों के हृदय में रहते हैं। तो अब आप माइक पे बोलिएगा, अहम आत्मा के दो अर्थ क्या हैं? किसको समझ में आए? नहीं सुन रहा है, मैं रिपीट करता हूं। पहला, कारुणोदकषाय विष्णु के रूप में वो समग्र महातत्व के परमात्मा है। बस इसको ऐसे समझिए, इससे अधिक समझ में ना तो मुझको आया है ना आपको, आपको समझने की जरूरत है, उससे अधिक मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम ये भी धारणा नहीं कर सकते महातत्व होता क्या है। कैसा लग रहा महातत्व? मतलब इसलिए कुछ बादल जैसा होगा, कुछ होगा, हम लोग जानते नहीं है क्या वो चीज। हाँ, ऐसा सोच रहे हो लेकिन क्या बादल जैसा है? भागवत में वर्णन है लेकिन वो खाली एक वही शाखा चंद्र न्याय है, हम तो देखे नहीं उसको कुछ, तो प्रकट रूप से तो नहीं देख पाए हम लोग, तो खैर इतना जैसे आचार्य बताते हैं बस स्वीकार कर लेना। दूसरा क्या है? गर्भोदक अशय विष्णु के रूप में अपने को विस्तार करते हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में आने के बाद हर जीव के हृदय में शिरोदक अशय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में वो विस्तार करते हैं। यस गुड।
बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता, जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है,
प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः।
परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है।
आप जब भागवतम पढ़ेंगे, जो भक्त लोग पढ़ते हैं वो समझ पाएंगे कि पूरे ब्रह्मांड का सृजन हो गया था लेकिन कुछ भी चल नहीं रहा था। मैं वो बार बार लास्ट में एक लाइन आती है, हाँ क्या बोलिए माइक पे, लेकिन विराट पुरुष जो है वो जागृत नहीं हुए। फिर भगवान अपने आप को प्रवेश करते हैं तब फिर सब कुछ जागृत होता है। तो फिर हमको वही बात याद आती है कि देवता लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। याद आ रहा ना, हम लोग ने भक्ति वृक्ष में चर्चा करा था कि कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है। इसी संबंध में केना उपनिषद आता है, देवताओं और असुरों का युद्ध हो गया, देवता लोग जीत गए। अब इशू ये हुआ कि जीते किसकी वजह से, सब बोले आदित्य, सूर्य बोले मेरी वजह से जीते, इंद्र बोले नहीं मेरी वजह से जीते, तो वो वायु बोले नहीं मेरी वजह से जीते। तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेके आके आते हैं और एक तृण रख देते हैं सामने, कहते हैं इसको आप नष्ट करके दिखाइए। तो सूर्य तपाने का प्रयास करते हैं, अग्नि जलाने का प्रयास करते हैं, वायु उड़ाने का प्रयास करती है, कुछ नहीं होता। तो सब लोग बोलते हैं केना केना केना, किसके द्वारा इसको शक्ति प्राप्त हो रही है, कौन कर रहा है। तो वहीं से केना उपनिषद का वर्णन आता है इस प्रकार से, बहुत अच्छा है। समझ रहे कौन है, कृष्ण। जैसे आपको याद है ना, वो वही वाली बात फेमस है, हिरण्यकश्यप पूछता है कहां से तुमको इतना ये बल मिल रहा है प्रहलाद को, तो कितना खल गया होगा ना जब प्रहलाद ने बोला जहां से आपको मिल रहा है वहीं से मेरे को मिल रहा है। आप देखें कितना चिढ़ गया होगा, आप कभी सोचे कितना चिढ़ गया होगा, है कि नहीं। तो इंटरेस्टिंग है आगे, हाँ कहाँ
श्रीमद् भागवत में तीनों
पुरुष। एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए अगर जीवन में हम कुछ कर पा रहे हैं तो कभी भी अहंकार नहीं आएगा। अगर भगवत गीता के इन श्लोकों को हम समझेंगे, कुछ भी शक्ति थोड़ी मात्रा में जो भी हमारे पास है वो सब भगवान से आ रही है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इवन ये शक्ति कि सुबह उठकर ब्रश करना है ये भी भगवान से आता है। अगर आप कभी, पता नहीं आपके संग कभी हुआ है कि नहीं, मेरे संग कभी कभी हुआ ऐसा कि मैं 20 सेकंड के लिए भूल गया कि मुझे करना क्या। एक दो बार ऐसा हुआ, मैं कम 15-20 सेकंड के लिए मुझे कुछ भी याद नहीं था मुझे करना क्या, मैं कन्फ्यूज हो गया था मुझे क्या करना, फिर 20 सेकंड के बाद मुझे याद आया कि मुझे क्या करना। ऐसे समय बहुत डरावना लगता है ऐसा, लेकिन हर क्षण भगवान हमको ऐसे याद दिला रहे। ठीक।
श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है, सात्व तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह
कारणार्णवजले भजति स्म योग निद्राम।
सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः
कारण अर्णव, अर्णव का अर्थ क्या होता है, सागर। हम लोग कहां पढ़ते हैं कारण, ने कहां पे अर्णव शब्द कहीं आता है, संसार दावा कहीं अर्णव का अर्थ होता है सागर, और कारण मतलब जो इस भौतिक सृष्टि का सागर, उसका सृजन वहीं से होता है। ठीक है।
अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है।
मैं इस बात पर छोटा सा कमेंट ये करूंगा कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और जितनी मात्रा में श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में उत्साह बढ़ जाएगा कि जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो वही कृष्ण जो कि स्वयं माँ विष्णु के स्रोत हैं वो हमारी जीवा प्यार है। बोलना आसान है लेकिन अगर आप श्रद्धा रखेंगे तो कितना ईगरनेस हो जाएगी ना, कितना सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम कृष्ण बलराम को प्रणाम कर रहे हैं जो कि महाविष्णु तक के स्रोत हैं। एक अच्छा मेडिटेशन है। कुछ और कोई भक्त बोलना चाहते हैं इसके संबंध में? ओके, सो वी हैव। तो इनका प्रश्न है कि क्या कृष्ण महाविष्णु के स्रोत हैं? ये अच्छा प्रश्न है, इसको हम थोड़ा सा एड्रेस कर देते हैं। विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि महाविष्णु जो हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो भी उनके कला विशेष हैं, उनके विस्तार हैं, तो उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। अब थोड़ा तत्व की दृष्टि से देखें, किसी को श्लोक याद है वो? दीपार्चिरेव दशांतरमभ्युपेत्या दीपायते हि विवृत हेतु समान धर्म यस्ता दृगे च विष्णु चया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे एक कैंडल, उसे बहुत सारे कैंडल आप जला लेंगे फिर भी एक ओरिजिनल कैंडल होता है, तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु और कृष्ण में शक्ति की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उनके स्रोत हैं। अब आप स्वाभाविक रूप से प्रश्न करेंगे, तो प्रभु जी विष्णु कब कृष्ण से आए? ये एक बद्धात्मा का स्वाभाविक प्रश्न होता है। जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, मुझसे नहीं एक भक्त से प्रश्न किया, भाई आत्मा मरती नहीं है तो मान रहा हूं, कभी ना कभी तो आई होगी। बोलते हैं ना नायम भूत्वा भाविता न भूया, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि आत्मा कभी नहीं आई हो, हमेशा से रही हो, तो कहां दिक्कत है इसमें बताइए? इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न उठ रहा है, पहले इसको समझ लेंगे तो भगवान विष्णु वाली बात भी समझ में आ जाएगी। आत्मा अनादि है, ये क्यों बोल रहे हैं? ऐसा संभव कैसे हो सकता है? इसमें क्या दिक्कत है? हाँ ऑन कीजिए। यस, भगवान की बात नहीं हो रही, आत्मा अनादि है तो वो व्यक्ति क्यों बोला ऐसा संभव कैसे हो सकता है? हाँ ओके बोलिए। हाँ भगवान का अंश है, ठीक है। यस,
क्योंकि हम इस जगत में शुरुआत देखते हैं हर वस्तु की और अंत भी देखते हैं।
बहुत सुंदर उत्तर।
हमारी जो इंद्रियां वो वहीं तक देख पाती है।
वेरी नाइस, यही उत्तर है। क्योंकि इस जगत में हम हर चीज का अंत देखते हैं, आदि देखते हैं, आदि देखते हैं, अंत देखते हैं। तो ये धारणा समझते, कल्पना नहीं, धारणा। कल्पना अलग चीज होती है, धारणा कंसेप्शन को धारण करना कि कोई चीज शाश्वत हो सकती है, ये संभव है, प्रैक्टिकली संभव है। मेरा आदित्य नाम का एक मित्र था, वो मैथमेटिक्स में बहुत तेज था, उसका एक बड़ा सुंदर कमेंट है कि इन्फिनिटी की धारणा करना हमारे लिए संभव है। इन्फिनिटी मतलब अनंतता, जहां किसी चीज की लिमिट ना हो। हम नहीं समझ पा रहे ना, देखो जैसे मैं बोलूंगा लिमिट ना हो, आप मन में करें ना बहुत बड़ी लेकिन यहां पर रुक गई, बहुत बड़ी लेकिन यहां पर रुक गई। उसी प्रकार से अनंत समय की धारणा भी बद्धात्मा नहीं कर सकता। जब मैं बोलूं कि आपकी शुरुआत नहीं हुई तो आप पहली चीज क्या सोचोगे? कभी तो शुरुआत हुई होगी ना, पहली चीज यही आता है, कभी तो शुरुआत हुई होगी ना। तो हम इसे दिखाता है हमारी चेतना भौतिक समय के द्वारा बद्ध है ऐसे करके। उसी तरह से अच्छा, हम लोग अंश किसके हैं? भगवान के। तो मतलब भगवान हमारे स्रोत हैं, तो यानी कि हम कभी भगवान से आए होंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ये भौतिक वाक्य हैं, इस कारण से हमें मुश्किल लगता है समझने में। महाविष्णु भी शाश्वत हैं और भगवान कृष्ण भी शाश्वत हैं, फिर भी महाविष्णु के स्रोत कृष्ण हैं। इसको हम लोगों अचिंत भेदाभेद से सिद्धांत के अनुसार स्वीकार करना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम इस बात को समझ पाएंगे। जी जैव धर्म में इसको पढ़ रहा था कि ये सारी चीजें समझ में आती हैं समाधि की अवस्था में, जब हमारा इंद्रियां पूरी तरह से आंतरिक हो जाएंगी तब आपको उन बातों की अनुभूति होगी, अन्यथा आप इसको नहीं समझ सकते, युक्ति के द्वारा कतई नहीं समझ सकते। हाँ पूछ रहे थे।
कोई ये प्रश्न कर सकता है फिर तुम ब्लाइंड फेथ करें?
ब्लाइंड फेथ नहीं, रीजनेबल फेथ। भगवद गीता को इतने महान आचार्य बोल रहे हैं तो हम स्वीकार करते हैं, जैसे हम अपने पिता को जानने के लिए अपनी माँ के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करते हैं, रीजनेबल फेथ करते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि साक्षात्कार होगा नहीं, क्योंकि भगवान गीता के नवे तह बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, लेकिन शुद्धि हो जाएगी तब प्रत्यक्ष होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
अगले श्लोक पर जाएंगे।